आज कलीसिया संत योहन मरियवियानी का त्यौहार मनाती है। यह सभी पुरोहितों का त्यौहार है और विशेष रीति से धर्म प्रांतीय पुरोहितों का त्यौहार है। बहुत कम संत ऐसे होते हैं जो धर्म प्रांत में काम करके संत बन गए हैं। इसका मतलब शायद ये नहीं है कि धर्मप्रांत के पुरोहित अच्छे जीवन नहीं बिताते हैं, बल्कि शायद यह है कि धर्मप्रांतों में जो पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाले जो पुरोहित होते हैं वे जाने नहीं जाते हैं और उन्हें संत घोषित नहीं किए जाते हैं। संत घोषित करने का ये मतलब नहीं है कि जिनको संत घोषित किया जाता है वही ही संत है। बहुत से संत हैं जिनको संत घोषित नहीं किया जाता है। ये भी एक विशेष कृपा है कि कोई संत बने और संत घोषित न किया जाए। मैंने संत योसेफ के धर्म भवनों से सुना कि उनके स्थापना करने वाले पुरोहित ने उनके लिए नियम बनाया कि उनके धर्म समाज के कोई भी व्यक्ति संत घोषित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म समाज के सदस्य जितने भी हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को संत घोषित नहीं किया जाएगा। संत योहन वियानी एक ऐसे संत है जिनको बचपन में लोग बुद्धू समझते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कुछ लोग उनको गधा नाम दिया था, गधे कहकर पुकारते थे। पढ़ाई नहीं कर सकता था, विशेष रीति से लातीनी भाषा को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम था, प्यार था और प्रभु के वचन सुनने में उनकी बड़ी इच्छा थी। प्रभु के लिए समर्पित होने में उनकी बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और उनके बिशप स्वामी ने उनको आर्स नामक एक ऐसी जगह भेजा जहाँ पर लोग मिसा में नहीं आते थे, पाप करते जाते थे, किसी भी आध्यात्मिक बात पर ध्यान नहीं देते थे। तो उनकी परिस्थिति को देखकर संत योहन वियानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने पैरिश के लोगों को समर्पित किया और उनके लिए घंटों तक प्रार्थना की और तपस्या किया और उपवास किया। इस प्रकार उनकी प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रार्थना और उपवास के फलस्वरूप ईश्वर की आशीष उन्हें प्राप्त हुई। धीरे धीरे लोग उनके गिरजाघर में आने लगे और उन्होंने पाप स्वीकार संस्कार की ओर लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने लोगों को प्रभु की क्षमा और प्यार, अनुकंपा तथा दया के बारे में समझाया और उनको पाप स्वीकार ग्रहण करने के लिए आकर्षित किया। इस प्रकार धीरे धीरे लोग पाप स्वीकार ग्रहण करते हैं और बहुत से लोग वहाँ आने लगते हैं। साथ ही संत योहन वियानी का जीवन और पवित्र बनते जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं आगे चलकर जब पाप स्वीकार के लिए लोग आते हैं, संत योहन वियानी लोगों के कहने के पहले ही यह समझ जाते हैं इनके अंदर कौन कौन सा पाप भरा है। जब कोई कुछ पाप छिपाता था, संत योहन उनको याद दिलाता था, आपने ये पाप छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर उनके सामने प्रकट करता था कि जो पाप स्वीकार के लिए आते हैं उनके जीवन में कौन कौन से पाप भरे हैं। तब लोगों को समझ में आया कि ये व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्ति है, ईश्वर का कृपा पात्र है। और बहुत से लोग वहाँ आने लगे और कहा जाता है कि संत योहन मरी वियानी 14 से 16 घंटे रोज़ पाप शिकार सुनते थे और बहुत कम खाना खाता था। इस प्रकार एक तपस्या का जीवन, उपवास का जीवन, प्रार्थना का जीवन बिताकर लोगों को पश्चाताप और प्रायश्चित की ओर आकर्षित किया और बहुत से लोग यीशु को जानने लगे और संत योहन वियानी उनके लिए प्रार्थना करते जाते थे। और उनके बुढ़ापे में कहा जाता है कि बहुत से तपस्या और पाप शिकार 14 से 16 घंटे तक सुनने तथा बहुत उपवास करने के बावजूद भी एक दिन अपने पल्ली से वो भाग जाता है। और रास्ते में उनके पल्ली वासियों ने उन्हें देखकर रोक लिया और उनसे कहा, हे पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। तो संत योहन वियानी ने कहा, आज तक कई सालों से मैंने आप लोगों की सेवा की, आप लोगों की आत्मा को बचाने के लिए कोशिश की, अब मैं जा रहा हूँ अपनी आत्मा को बचाने के लिए। इन सब तपस्या और प्रार्थना के बावजूद भी योहन वियानी को लगा कि मुझे अपनी आत्मा को बचाने के लिए और भी प्रार्थना और प्रायश्चित करने हैं। तो इस प्रकार वो तपस्या और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाते हैं। ये कैसा जीवन है जहाँ हम देखते हैं एक पुरोहित बहुत से लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। संतों का जीवन ऐसा ही होता है। पुरोहित और नबी ईश्वर की वाणी सुनकर, ईश्वर की वाणी सुनाने वाले लोग होते हैं। उनको इस कार्य में बने रहना चाहिए। आज के पहले पाठ में हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 28 से सुनते हैं कि वहाँ पर दो प्रकार के नबी हैं, एक हनन्याह नामक नबी, दूसरा यिर्मयाह नामक नबी। हनन्याह नामक नबी झूठा नबी है क्योंकि वह झूठी भविष्यवाणी करते हैं, ईश्वर से जो नहीं सुनता लेकिन ईश्वर के नाम पर बोलता है वह झूठा नबी है। लेकिन यिर्मयाह एक सच्चा नबी है जो ईश्वर की वाणी सुनकर, ईश्वर का वचन सुनकर लोगों को बताते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये कहते हैं। लेकिन झूठा नबी ईश्वर की वाणी नहीं सुनता, ईश्वर का वचन नहीं सुनता, उससे ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, फिर भी वो बोलने लगता है ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर की वाणी है, और आगे कुछ भी बोल देते हैं। ईश्वर ऐसे झूठे नबियों को धिकारते हैं। नबी अचकेल के ग्रंथ में अध्याय 13 में प्रभु ईश्वर झूठे नबियों की निंदा करते हैं। झूठा नबी झूठ के साथ देता है। हम जानते हैं कि झूठ ईश्वर से नहीं आता बल्कि शैतान से आता है। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु स्वयं समझाते हैं, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। अपने ही बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। यीशु मार्ग सत्य और जीवन है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सच्चाई है, कभी भी ईश्वर में झूठ नहीं है। आइए हम सभी पुरोहितों नबियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब सत्य का साथ दें, ईश्वर की आवाज़ सुने और सुनाएं। सभी प्रचारकों के लिए ईश्वर का वचन सुनकर ईश्वर के इच्छा को लोगों के सामने प्रकट करने की कृपा हम आज के दिन इस मिसाबलिदान में मांगे। आज का यह मिसाबलिदान हमारे धर्मप्राण के धर्माध्यक्ष तथा पुरोहितों के लिए चढ़ाते हैं जिनका आज का दिन त्यौहार है। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे ताकि वे सब सत्य का साक्ष्य दे सके, सत्य के विषय में बोले, सत्य का अनुभव करें और सत्य को प्रकट करें।